बाबा, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं पापा? ओ, तो आप आराम कर रहे हैं। बाबा, बाबा,
अच्छा तो मातरमा, अगर इजाजत दें तो मैं अमीर अली से कुछ बातें कर लूं, अगर इजाजत हो तो।
कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप साहिब इख्तियार हैं।
मैं कहां पर इनसे सवाल कर सकता हूं?
मेरा कमरा है, आप चले वहां।
वाह, ये तो अच्छी बात है। डॉक्टर इजाजत हो तो
कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, अपना काम करो। अच्छा ठीक है।
यूनुस बेटे जाओ, इंस्पेक्टर साहब के लिए कुर्सी लेकर जाओ।
जी अम्मी।
आइए।
वाह वाह अमीर अली, तुम्हारा कमरा तो बहुत शानदार है।
आपकी तारीफ।
बहुत अच्छा कमरा है।
वो अपनी मनमानी करते हुए फैसले क्यों लेता?
कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो इसके।
नहीं
लिए।
मैं अमीर अली की बात कर रही हूँ।
भाई तुम्हारा कमरा तो वाकई बहुत अच्छा है।
आपकी मेहरबानी है, शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया, तकलीफ की माफ़ी चाहता हूँ, तकलीफ उठाने का शुक्रिया। अच्छा तो अमीर अली, ये पेंटिंग तुमने बनाई है? ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है।
ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत
हो। जानते हैं वो कैसा है।
ठीक है, लेकिन परेशान मत हो।
आप कितने अच्छे पुलिस वाले हैं।
तुम भी बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा किस बात पे झगड़ा करते थे?
झगड़ा किया करते थे बस मौकों पर, फुटबॉल और सीरियल पर। जब लाइव चल रहा होता था तो पापा फुटबॉल देखना पसंद करते थे और मम्मी सीरियल देखना पसंद करती थी। उसके बाद दोनों में बहस हो जाती और चैनल बदलने लगते, फिर मजाक मजाक में झगड़ा हो जाता, आखिर टीवी बंद कर दिया जाता और मैं प्लेस्टेशन गेम खेलने लगता।
समझा। अच्छा तो ये बताओ, एक दो हफ्ते में उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ था?
नहीं नहीं, अम्मी कभी कभार यूं ही उलझ पड़ती हैं क्योंकि पापा का ध्यान फुटबॉल की तरफ होता है और अम्मी को गुस्सा आ जाता है।
अच्छा ये तो बताओ अमीरली, कि तुम्हारे पापा की दुश्मनी किससे थी?
मेरे पापा फरीदून खान को पसंद नहीं करते थे, लेकिन फरीदून खान अच्छा आदमी है।
दरअसल फरीदून खान की कहानी का सिलसिला पुराना है, यानी कल और आज की बात नहीं है। दरअसल ये वाकया उनकी बहन से रिश्ता तलब करने के वक्त का है, जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुश्मनी इस हद तक पहुंच जाए कि वो।
मोहतरमा, आपकी आयली जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी?
नहीं, मेरे शौहर के साथ रवाबित बहुत अच्छे हैं और अपने वालिदैन से भी इस बाबत कोई इख्तलाफ नहीं रहा।
आपके शौहर के ताल्लुकात आपके वालिद के साथ कैसे थे?
बहुत अच्छे थे, उनका आपस में कोई इख्तलाफ नहीं था।
तुम्हारी अम्मी के साथ भी ऐसे ही थी क्या?
हाँ, आपस में ऐसी कोई खास बात नहीं थी।
नहीं, मरियम का मसला एक दरख्वास्त था खुद मरियम की तरफ से, मैं उस पर जबरदस्ती नहीं थोप सकता था। हादी अंकल भी जोर जबरदस्ती के बिल्कुल कायल नहीं है, उनके दरमियान कोई मसला भी नहीं है। दिलचस्प बात तो यह है कि उल्टे आप हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, वो भी ऐसी हालत में।
एक दिन फोन आया कि एक गाड़ी दरवाजे पर है, उसके बाद हम दरवाजे पर गए। उनकी जिंदगी का सब कुछ यही गाड़ी थी, उन्होंने कभी एक चीटी को भी नहीं सताया। मुझे नहीं पता कि उन्हें किस जुर्म की पादाश मिली है।
मेरे पापा इतने अच्छे इंसान थे कि किसी से उनकी दुश्मनी हो ही नहीं सकती थी। मुझे नहीं पता कि उनका कत्ल क्यों कर दिया गया।
आप लोगों का दिल दुखाने पर मैं माफी चाहता हूँ।
नहीं, अलबत्ता ये सदमा बर्दाश्त करना बहुत सख्त है। जो कुछ भी मैंने देखा, माफ करें, मेरी अभी नफसियाती हालत ठीक नहीं है।
मैं महसूस कर सकता हूँ, बिल्कुल।
बहरहाल मैं चाहता हूँ कि आपकी मदद करूं ताकि इस कत्ल को अंजाम देने वालों का पता चल सके।
जरूर।
Suratamo tu oyene شبی خسته میپرسم از خودم این غریبه کیه از من چی میخوام اون به من یا من به اون خیره شدم باورم نمیشه هر چی میبینم چشامو یه لحظه رو هم میذارم خودم میگم که این صورتکم میتونم از صورتم پرش دارم میکشم دستم و روی صورتم هرچی باید بدونم دستم میگه میشکنم آینه رو تا دوباره نخود از گذشته ها حرف بزنه پاینه میشکنه هزار تیکه میشه اما باز تو هر تیکش عکس منه عکس و با دهن کجی به هم میگن چشم امید و بر رضا چشم دیگه فرقی ندارن اون به من
سلام
سلام تم کام پر کیوں نہیں گئے
گیا تو تھا لیکن کام میں میرا دل نہیں لگا
کوئی بات نہیں کام پر نہیں گئے تو کمپنی سے بار بار فون آ رہا ہے میرا بھی بالکل موڈ نہیں ہے اور نہ ہی کسی کام میں دل لگ رہا ہے
کس نے فون کیا تھا
پتہ نہیں کس نے فون کیا تھا دفتر جانے پر پوچھ لینا کہ کس نے کیا تھا بس لوگ فون کیے جاتے ہیں کہ ہوشمند صاحب ہوشمند صاحب اب یہاں کوئی ہوشمند نہیں رہتا ایک آدمی تھا جو
ہوشمند نہیں ہے کیا ہم جناب نہیں ہیں
تم تو امی کی جان ہو تم تو اپنے پاپا کے لاڈلے ہو بیٹے تم پر قربان جاؤ इधर आ जाओ मेरे पास, उठो आ जाओ, तुमने अपना खाना अधूरा खाया है, आ मेरे बच्चे, शाबाश, बैठो खाना पूरा करो, शाबाश। हाँ चलो साथ में खाते हैं। हाँ
सलाम।
सलाम, कैसी हो, ठीक हो? तबीयत तो ठीक है?
नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत ही दुश्वार है मुर्तजा, बहुत ही दुश्वार।
यही वक्त है कि आदमी साबित करे कि मजबूत है, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा, तुम्हारी अम्मी और अमीर अली को तुम्हारी जरूरत है।
मैं नहीं कर सकती, कहते हैं कि यहाँ तुम्हारे काम की जगह है, रोना मत, वहाँ तुम्हारा घर है, अपनी माँ का ख्याल रखो, अमीर अली का ख्याल रखो, अपने पास काबू रखो, माँ को गहरा सदमा लगा है, उनके सामने रोना मत, खुद पर काबू रखना। तुम्हारे बड़े भाई का भी पता नहीं है कि क्या हुआ है उसे, वो सब्र का दामन क्यों छोड़े जा रहा है, उसके सामने बेताबी का इजहार ना करना, खुद पर काबू रखना। मैं आखिर क्या करूं, मैं पागल हो जा रही हूं मुर्तजा।
यहां पर बिल्कुल आजाद हूं, जितना चाहो जी भर कर रो लो, खुद को हल्का कर लो।
अब हल्की नहीं हो सकती, बस यही महसूस करती हूं कि कोई भयानक ख्वाब देख रही हूं, एक बहुत ही बुरा और जलानी ख्वाब, और मुंतजर हूं कि कोई आकर मुझे जगा दे।
काश के ख्वाब ही होता। अपनी सीट बेल्ट बांध लो।
मुझे नहीं जीना, बस मर जाने को जी करता है। उनकी बहुत याद आ रही है मुर्तजा, ऐसा लगता है कि जैसे 10 बरसों से उन्हें नहीं देखा। मैं टूटी जा रही हूँ।
ऐसे मौकों पर पता चलता है कि आदमी कितना कमजोर है और उसके बस में कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें मजबूत बनना होगा, अपनी माँ के लिए और अमीर अली के लिए।
अब समझ में आ रहा है कि हम कितने खुशकिस्मत थे और समझ नहीं रहे थे।
आदमी के पास जब कोई चीज होती है तो उसकी कद्र नहीं करता, तब समझ में आता है कि किस गौहर को खो दिया है, किस कदर अजीज को गंवा दिया है, तब पूरी दुनिया के एवज उसे पाना चाहता है, लेकिन क्या फायदा, हालात तो पहले जैसे नहीं हो सकते है ना।
एक यूनुस का वो हाल है।
क्या वो काम पर नहीं जा रहा है?
मुझे नहीं लगता, अम्मी कहती हैं कि कभी कभार उठकर घर से बाहर चला जाता है, दोपहर को लौट आता है, ना खाना खाता है, ना किसी से बात करता है। अम्मी भी उसके साथ थोड़ी खिची खिची सी हैं।
यूनुस खुद को कसूरवार समझता है।
अब इस पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए।
जी जरूर जरूर, बहरहाल आप खानदान में हमारे बड़े हैं। आपकी चाय ठंडी हो गई, मैंने आपका ये रुमाल कंपनी की लिफ्ट में पड़ा हुआ पाया, आपकी खिदमत में पेश करूं?
चाय नहीं पीऊंगा, शुक्रिया। ये मेरा रुमाल नहीं है, अलबत्ता मेरे पास इस जैसा रुमाल है, बाजार में इस तरह के रुमाल बहुत सारे मिलते हैं, हमने बहुत सारे देखे हैं, देख लो तुम खुद। तुम इसे रख लो, मोहतरमा नसरीन आप अच्छी तरह से जानती कि मैं इन मरहूम को किस कदर चाहता था। खुदा की कसम मैंने इन मरहूम के लिए इतने आंसू बहाए जितना अपने वालिद मरहूम के लिए भी नहीं रोया, लेकिन अब क्या किया जा सकता है।
ये लीजिए,
मेहरबानी करके मुझे मेरा रुमाल दो, ये मेरा नहीं है।
फर्क तो कोई नहीं है?
बहुत फर्क है, मुझे अपने परफ्यूम की पहचान है।
फरीदून, तुम इतना रो मत, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। नसरीन भाभी, खुदा के वास्ते घर में अकेले मत रहे, अजीज अम्मी के घर चली जाएं। हमारे घर भी आप आए तो हमारी खुशकिस्मती होगी, लवासान चलते हैं, अभी पहले से ज्यादा इस वक्त आपकी बच्चों को जरूरत है।
ठीक है।
यूनुस बेटा।
जी जनाब।
कल की तय उनको तुम्हारे पास भेजूंगा। अमेरी और अपनी अम्मी को लेकर लवासान चले जाओ ताकि आबो हवा में कुछ तब्दीली आ जाए।
जी जैसा कि आप चाहें।
हम आपको और कितायुन बेटी को तकलीफ नहीं देंगे, इंशाल्लाह फिर कभी देखेंगे।
नहीं नहीं, मैं उसे जरूर भेजूंगा, खिदमत का एक मौका तो दें। वहाँ पर और कोई नहीं है, बस आप लोग रहेंगे वहाँ और हानिया मैडम रहेंगे। अगर ना चाहें तो वापस आ जाइएगा।
आप लोग कुछ ले नहीं रहे हैं, कम से कम चाय तो पीजिए, फल रखिए, फल खाइए, सब ऐसी रखा हुआ है।
शुक्रिया। ठीक है, खाती हूँ।
क्या तुम ऊपर नहीं आओगे?
नहीं, रहने दो, बोलो कि बस जल्दी नीचे आ जाए।
ठीक है, फिलहाल खुदा हाफिज़। मुर्तज़ा, मैं कह रही थी कि ऊपर आ जाओ, एक चाय पी लो, फिर कमरे में बैठकर तुम।
नहीं, बाहर में ऊपर नहीं आऊंगा, उसको बोलो कि नीचे आ जाए, यहीं पर बातें कर लेंगे।
अच्छी बात है।
सलाम बोल देना।
अच्छी बात है। सलाम।
सलाम, कैसी हो बेटी?
हाँ अम्मी जान, आप कैसी हैं? ठीक हैं। ये यूनुस कहाँ है? सुबह से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। घर पर है?
हाँ, यूनुस अपने कमरे में।
अभी आती हूँ। यूनुस,
अंदर आ जाओ।
सलाम, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे?
सलाम क्योंकि जवाब देने का दिल नहीं करता।
उठो, मुर्तजा नीचे इंतजार कर रहा है, तुमसे बात करना चाहता है।
बोल दो कि सो रहा हूँ।
जानता है कि सो रहे हो, बोला उठा दो।
देखो, मेरी तबीयत खराब है। क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई है जो हमेशा यहीं रहती हो?
क्योंकि ये लड़कियां ही होती हैं जो अपने घर वालों की खैरियत पूछती रहती हैं। वे लड़कों की तरह नहीं होती जो पलटकर भी घर वालों को नहीं देखते और ना ही उनका हालचाल पूछते हैं। उठो मुर्तजा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ज्यादा इंतजार मत करवाओ। यूनुस, यूनुस भाई, उठो, वे तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो भी तुम्हारा भाई है।
ये भी बस।
सलाम।
सलाम।
कैसे हो?
खाने पर रुकेंगे?
देखो अमीर अली, तुम चुप हो जाओ,
बाहर घूमने जाएंगे।
कैसे?
एक मर्तबा भी नहीं कहेंगे अमीर अली, चलो तुम्हें भी ले चलते हैं, दिल बहल जाएगा। हर वक्त बस यूनुस 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 की रट लगाए रखते हैं।
फिर कान लगाकर सुन रहे थे, ये भी कोई काम हुआ?
अच्छा काम है।
अच्छा, क्या ये अच्छा काम है?
नहीं नहीं।
और बेहयाई? और बेहयाई
बुरा काम है।
मुर्तजा कहाँ है?
गाड़ी में है, दोनों बातें कर रहे हैं। मेहमान है क्या?
तुम्हारी फूफी वगैरह आई थी, आए थे खैरियत दरियाफ्त करने के लिए।
पुराने जमाने में क्या दामाद हुआ करते थे?
तुम्हें पुराने लोग बहुत याद आते हैं, अच्छी तरह समझते हो।
तुम तो इतनी छोटी सी थी, मैं सब चीजों को समझता हूँ।
अब शैतनत ना करो, ये लो तुम्हारा ऑर्डर आ गया है, प्लेस्टेशन का नया गेम है।
तुम्हारा शुक्रिया।
अच्छा तो वो लोग क्या कह रहे थे?
सलाम।
सलाम।
कैसे हो, ऊपर क्यों नहीं आ रहे हो?
ठीक हूँ, उन दिनों की याद आ गई जब तुम्हारे दरवाजे पर बैठकर घंटों बातें करते थे। यहीं पर बैठा करते थे।
उस वक्त मेरे पापा जिंदा थे, कहा करते थे मुर्तजा तुम्हें पढ़ाई नहीं करने देता है, अब किस बात का डर है, चलो ऊपर
आओ। यूनुस गाड़ी में बैठ जाओ।
हाँ, उस वक्त की तरह दरवाजे पर बैठे।
मंजूर है। उस वक्त मैं उधर बैठा करता था, तुम्हें याद है? उठो उठो, इधर बैठो, मैं अपनी जगह पर बैठूंगा। मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा हूं यूनुस।
कौन नहीं घबरा रहा?
चलो यूनुस, क्यों ना कबाब खाएं? जिसके पास जितना भी पैसा है निकालो और चलें। चलो,
अभी हम अपने पैसे से पूरी दुकान खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे बीच एक रिश्तेदार नहीं है।
तुम्हारे पापा मुखालिफ थे? कहा करते थे कबाब तो ठीक है लेकिन घर के खाने में क्या है।
तुम तो जानते हो ना मैं उन्हें कितना चाहता था।
वो भी तुम्हें बहुत चाहते थे और अब भी चाहते हैं। बस ये सोचो कि वो जिंदा हैं। जो काम उन्हें पसंद था उसे अंजाम दो। बस यही कहो कि पापा जो आपका हुक्म हो।
अभी तो वो इस दुनिया से जा चुके हैं। मुझसे भी गलती सरजद हो चुकी है। तुम जानते हो मैं क्या करना चाहता हूँ।
अच्छा ये बताओ कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो।
मैं चाहता हूं कि उनकी रूह को खुशी मिले। लेकिन ना जाने मुर्तजा कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा करूं मुर्तजा कि उनकी रूह को खुशी हासिल हो। फिर फौरन इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि उनकी रूह को इन सब चीजों से क्या लेना देना है।
कहते हैं एक दिन हजरत मूसा कोहेतूर पर इबादत करने जा रहे थे। रास्ते में देखा कि शैतान सजदे में सर झुकाए हुए है, खुदा से दूरी और जुदाई के गम में रो रहा है। सजदे की जगह आंसुओं से भीगी पड़ी है। उससे बोलें क्या, तुम अपने पर शर्मिंदा हो? शैतान ने कहा, मुझे खुदा की बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा। आप तो खुदा के नबी हैं, कह दें कि मुझे माफ कर दें। हजरत मूसा वादा करके वहां से चल पड़े कोहेतूर पर इबादत करने के लिए। उसका पैगाम खुदा तक पहुंचा दिया। खुदावंदे आलम ने फरमाया, मूसा चूंकि तुम मेरे नबी हो इसके लिए तुम्हारी खातिर ठीक है, माफ किया। लेकिन एक शर्त है, उससे कहो चूंकि आदम को सजदा नहीं किया इसलिए निकाल दिए गए। जाओ फला जगह आदम की कब्र है, वहां जाकर सजदा करो ताकि मैं बख्श दूं। हजरत मूसा ने भी खुदा का पैगाम शैतान तक पहुंचा दिया। शैतान ने कहा, मैंने खुद आजम को सजदा नहीं किया, अब जाकर उनके कब्र को सजदा करूं?
मतलब मैं शैतान हूं?
नहीं, लेकिन शैतानी बातें कर रहे हो। उनके जिंदा रहते मैंने उनकी बात नहीं मानी, अब जबकि दुनिया से जा चुके हैं उनकी बातों पर अमल करना चाहता हूं।
मुर्तजा मैं काफी परेशान हूं और तुम्हारी ये बातें मुझे ना और परेशान कर रही हैं।
ठीक है तो मैं चलता हूं। क्यों ना एक चक्कर लगा लें, थोड़ा घूम लेते हैं।
सड़क की लाइटें जल चुकी हैं, अंधेरा छा गया है, मेरे पापा मुझे डांटेंगे।
ठीक है जाओ, लेकिन बाहर को नीचे भेज दो।
सलाम।
सलाम।
कैसे हैं जनाब?
यहाँ थोड़ा वर्जिश करो, वर्जिश आदमी को बशाश बना देती है और आदमी जब बशाश होगा तो अच्छी तरह से सोच सकेगा। आ जाओ एक गेम खेल लेते हैं।
आज तक मैंने ये गेम नहीं खेला है।
सीख जाओगे, घबराओ नहीं, मुझे दो। देखो इस स्टिक को ऐसे पकड़ते हैं और इसे गेंद के पीछे रखते हैं। आ, देखा ये कितना आसान है, स्टिक तुम्हारी गेंद को जहां चाहोगे पहुंचा देगी।
लेकिन मेरे लिए इतना आसान नहीं है ये।
तुम्हारे स्टिक ने मेरी दो घास उखाड़ डाली।
ये लीजिए।
तुमने महमूदी से चेक ले लिया?
अभी नहीं ले लूंगा जनाब, यहाँ कर आपको तकलीफ देने का मकसद एक तजवीज पेश करनी थी। इकबाल साहब ने कहा है कि यहाँ आपकी खिदमत में आकर बात करूँ।
तुम जहाँ कहीं भी चाहो वहाँ भी आ सकते हो, तुम हमारे लिए बाय से तकलीफ नहीं बल्कि बाय से खुशी हो। हाँ तो बोलो क्या बोलना चाहते हो।
शुक्रिया आपकी मेहरबानी है, अगर गुस्ताखी ना हो तो अर्ज करना चाहूँगा कि क्या आपके ख्याल में ये बेहतर ना होगा कि मौग और दरखास्तों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए हम पर्दाख्त की रकम में इजाफा कर दें, उस तरफ से इंस्टॉलमेंट की रसीद की मुद्दत को भी बढ़ा दें। इस तरह कस्टमर भी खुश रहेगा और हमारे कस्टमर की तादाद में भी इजाफा होगा।
ये भी एक सोच है, लेकिन पहले वाला जो प्लान था वो भी अच्छा चल रहा है।
ये सही है कि पहले वाला प्लान अच्छा चल रहा है,
लेकिन इसमें फायदा यह है कि हमारे कस्टमर की तादाद में इजाफा होगा और लंबी मुद्दत की वजह से लोग अपने वादों पर सही तौर तरीके से अमल नहीं करते हैं। हम जब उनके साथ अग्रीमेंट करेंगे तो बड़ी आसानी से कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा बगैर किसी नुकसान के हजारों लोगों का पैसा भी कंपनी में लगा रहेगा।
सोच तो वाकई बड़ी अच्छी है। महमूदी और इकबाल को भी बता दो, इन्हें भी इस काम के लिए तैयार कर लो।
उनको कोई परेशानी नहीं है, सबका दारोमदार आपकी राय पर है।
मुझे कोई एतराज नहीं है, जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही किया जाएगा। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है नगीन और आफ्ताब, जरा इसको इधर करो, उसके लिए भी इसी में ऐड दिया जाए। मैंने इसके लिए पूरी जमीनें भी खरीद ली और आसपास का सारा इलाका भी खाली करा लिया गया है।
शुक्रिया, आपने बहुत मेहरबानी की। अगर इजाजत दें तो मैं जाना चाहूंगा।
थोड़ी सी वर्जिश कर लो।
शुक्रिया, इससे बेहतर होगा कि इकबाल और महमूदी के साथ ऐड पर काम करूं। मैं ऐड तैयार करता हूं, क्योंकि ये आमदनी बढ़ाने के लिहाज से मेरी पहली तजवीज है कंपनी के लिए, तो चाहूंगा काम जल्दी शुरू हो जाए।
बहुत खूब, इंसान जो भी पसंद से करता है वही उसके लिए वर्जिश है। सिवाय इसके
के जैसा कि आप कहें,
सिवाय इसके कि आदमी किसी चीज का आदि बन जाए, ये कभी मत भूलना।
मुझे खुशी हुई जनाब,
सलामत रहो,
खुदा हाफिज।
मुझे दो। इतना ना खाओ कि पेट खराब हो जाए।
स्कूल नहीं जाऊंगा और क्या।
बेटे अगर बीमार पड़ गए तो भी स्कूल जाना पड़ेगा।
अम्मी जान, मेरे मेडिकल टीचर ने कहा है कि अगर बीमार पड़ गए तो स्कूल मत आना, क्योंकि इसके जरासीम से दूसरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे।
अभी बीमार तो पड़े नहीं हूँ। इंशाल्लाह कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे पापा के लाडले।
और अम्मी के नहीं।
अभी जाके एक कोने में बैठकर रोना शुरू कर देंगी। घर के हर कोने में पापा की ही यादें बसी हुई हैं।
धीरे धीरे खुद को संभाल लेंगी। मैंने अमीर अली को भी समझा दिया है कि उन्हें रोने की हालत से बाहर निकालने की कोशिश करें।
काश कि जो कुछ हुआ है वो सब ख्वाब होता।
उनके माहौल को बदल दूंगा।
अगर उनके माहौल और हालत को बदल सके तो बहुत बेहतर होगा।
उन्हें यहां से ले जाऊंगा यहां से। हाँ हाँ, मैं बाद में फोन करूंगा। खुदा हाफिज, सलाम।
सलाम। तुम्हारा खाना गैस पर रखा है।
कितनी अच्छी बात है कि मुझे आदमी समझा।
फिर भी अम्मी तुमसे नाराज थी। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे लिए खाना
तो रख। तुम्हारी विसातत ने असर दिखाया। क्या
कोई
बात
नहीं, दुनिया में एक ही तो भाई है।
अम्मी जान, खाने में क्या है? अम्मी जान, मैं बहुत वक्त से आपसे बात करना चाहता हूँ लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। अम्मी मेरी बात तो सुन लीजिए।
तुम सारी बातें अपने पापा से कर चुके हो।
मैंने गलती की है, कितनी मर्तबा कहूँ।
बिल्कुल एक मर्तबा।
एक मिनट के लिए बैठे, बहुत मेहरबानी होगी, मुझे बात करनी है। मैंने फैसला किया है और वो ये है कि मैं एक घर किराए पर लेना चाहता हूँ।
मुबारक हो।
नहीं, मेरे खुद के लिए नहीं, हम सबके लिए, मेरे, आपके लिए, अमीर अली के लिए।
मेरे और अमीर अली के लिए घर है। इस बात को तो जानते ही होंगे कि तुम्हारे मरहूम पापा ने कुछ वक्त पहले ये घर मेरे नाम कर दिया था।
अम्मी जान, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरा तुम्हारा क्या मतलब रखता है? इस घर की सारी चीजें आपकी हैं, मेरे पास जो कुछ है सब आपका है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि माहौल में बदलाव आए। अभी मैं उदास हूँ, आप उदास हैं, ये लड़का शमा की तरह पिघल रहा है, लेकिन जिंदगी अपने रास्ते पर चल रही है।
हाँ, जिंदगी अपनी डगर पर चल रही है, जिंदगी का सिलसिला जारी है, लेकिन मैं इस घर में अपने बच्चों के साथ हूँ, जिसका भी जहां कहीं जाने को दिल चाहे चला जाए, जिंदगी गुजारे। तुम्हारे पापा के साथ जिंदगी की यहां बहुत सी यादें बसी हुई है।
ऐसे जिद ना करें अम्मी जान। मैंने बाहर से बात की है, वो भी यही चाहती है। अमीर अली को भी कोई एतराज नहीं है।
जो अम्मी की राय होगी वही मेरी होगी। मैं बेगैरत नहीं हूँ, अम्मी के साथ खड़ा रहूंगा।
तुम्हारी इस गैरत पर मैं कुर्बान जाऊँ मेरे बेटे, लेकिन बाहर भी मेरी वजह से ही कह रही है, लेकिन मैंने अपना फैसला सुना दिया है।
पर मेरा गुनाह क्या है?
तुम्हारा गुनाह यह है कि तुमने पापा का दिल दुखाया है और अब अम्मी का दिल दुखा रहे हो। बाज आ जाओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा, समझे?
अमीर अली,
जरा उठो, खड़े तो हो जाओ, जरा देखूं।
मैं तो अम्मी का दिल रखना चाहता था।
कौन है?
हाँ मोहतरमा,
सलाम।
माफ करना, मैं मजीद हूँ। कुछ सामान है हातिफ साहब का, मैं लेकर आया हूँ।
आप अंदर आ जाएं। आप अंदर आ जाएं, आ जाएं अंदर, आ जाइए।
सलाम।
सलाम।
मैं शर्मिंदा हूँ, इसको मैंने धो दिया है और प्रेस भी कर दिया है। ये रही अमानत जो उनकी जेब में मिली।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाय वगैरह लेंगे आप?
नहीं, मुझे जाना होगा।
शुक्रिया, आपने तकलीफ उठाई। कम से कम अपना कोट पैंट तो टांगिया होता।
ठीक है ठीक है, शाम को वापस आने के बाद टांग दूंगा।